यह प्रोग्राम विपश्यना ध्यान केंद्र की ओर से हर शुक्रवार सुबह 8:10 से 8:35 तक प्रसारित किया जाता है। यह प्रोग्राम आप ऑनलाइन www.planetaudio.org.nz पर भी सुन सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप आचार्य श्री गोयनका जी के साथ कुछ वार्तालाप सुनेंगे।
नमस्कार श्रोतागण, स्वागत है आप सभी का विपश्यना के इस प्रोग्राम में। श्रोतागण, अब तक हमने धर्म के दो अंगों के बारे में जाना, आज बारी है तीसरे अंग की। गुरु जी कहते हैं कि धर्म के तीसरे अंग को प्रज्ञा कहते हैं। अब हमने ज्ञान के बारे में तो बहुत कुछ सुन रखा है, तो ज्ञान और प्रज्ञा में क्या अंतर है, आइए इसी सवाल करते हैं हम आचार्य श्री गोयनका जी से। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम माता जी। गुरु जी, हमने आपसे सील और समाधि के बारे में जाना, आज हम आपसे धर्म के तीसरे अंग प्रज्ञा के बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
बेटी, प्रज्ञा भारतीय अध्यात्म क्षेत्र में प्रज्ञा का बहुत बड़ा महत्व है, सभी परंपराओं में। मुझे अपनी बात याद है, किशोर अवस्था में ही प्रज्ञा के प्रति ऐसा आकर्षण जागा कि स्थित प्रज्ञ होना मैंने अपने मानस में अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, मुझे स्थित प्रज्ञ होना ही है। और इसके लिए बार बार ये श्लोक गुनगुनाते रहा, वीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्चते। स्थित धी मन स्थित प्रज्ञ, उस मुनि को स्थित प्रज्ञ कहते हैं जिसका राग का स्वभाव खत्म हो गया, वीतराग हो गया, भय का स्वभाव खत्म हो गया, वीत भय हो गया, क्रोध का स्वभाव खत्म हो गया, वीत क्रोध हो गया। ये लक्ष्य है कि हम कैसे इन विकारों से छुटकारा पाएं। जो छुटकारा पाए वो प्रज्ञा में स्थित होता है। और प्रज्ञा के बाद जो बार बार मन में उठते थे, नाभिनंदते न द्वेष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अभिनंदन नहीं करता, मनचाही हो गई तो उसमें बहुत आनंद से नाचने नहीं लगता, द्वेष नहीं पैदा करता। अनचाही हुई तो मन में द्वेष नहीं पैदा करता, तो समझो प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हुआ। मेरे सौभाग्य से 31 वर्ष की उम्र में पहली बार विपश्यना के शिविर में बैठा तो बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। अरे, ये भारत की पुरानी विधि, ध्यान विधि, ये तो यही करना सिखाती है। जो केवल मन में एक आदर्श था, वो आदर्श कैसे फलीभूत हो, कैसे जीवन में उतरे, ये करना सिखाते हैं। दिस इज प्रैक्टिकल गीता। ऐसे मन में भाव जागा और सचमुच करते 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 उसका लाभ मिलने लगा। तो इस विद्या में, इस रास्ते पर जब हम सांस का काम करते हैं तब भी एक पहला कदम उठने लगता है, क्योंकि सांस का काम करते करते भी विचार आते हैं। ऐसा नहीं हो एकदम निर्विचार हो गए, निर्विकल्प हो गए, विचार आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि विचार आए, हम फिर सांस पर आ गए, विचार आए, हम फिर सांस पर आ गए। ऐसे करते करते विचार आएंगे, बदलते चले गए। शुरू शुरू में तो किसके प्रति बहुत द्वेष है तो द्वेष का भाव जागता है, उसी के विचार जागते हैं। किसी के प्रति बहुत राग है तो राग का भाव जागता है। जैसे जैसे एक दिन बीतता है, दो दिन बीतता है, तीन दिन बीतता, विचार चल रहे हैं, लेकिन अब विचारों में परिवर्तन आ गया। अब जो धर्म की बातें सुनी, धर्म की बातें पढ़ी, तो अब धर्म का चिंतन, जो विचार आ रहे हैं वो धर्म के आ रहे हैं, धर्म संबंधी आ रहे हैं। तो बस ये सम्यक दर्शन का, प्रज्ञा का पहला कदम शुरू हुआ।
गुरु जी, आपने सम्यक दर्शन की बात की, तो इसमें हमें किसके दर्शन होते हैं?
सम्यक दर्शन को समझने के पहले दर्शन क्या होता है इसे समझना चाहिए, तब समझ में आ जाएगा किसके दर्शन होते हैं। भाषा कितने ही समृद्ध क्यों न हो, फिर भी उसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थों में उसका प्रयोग होता था, आज भी होता है। एक तो ये खुली आंखों कोई रूप देखें, कोई रोशनी देखें, कोई रंग देखें, कोई आकृति देखें, तो कहीं दिख रहा है मुझे इसका, प्रकृति का दर्शन हो रहा है, व्यक्तियों का दर्शन हो रहा है। उसका सम्यक दर्शन से कोई दूर परे का भी संबंध नहीं। एक और दर्शन के बाद चल पड़े ध्यान में। लोग ध्यान करते हैं तो मान लो किसी आकृति का ध्यान किया, उस आकृति की जो तस्वीर बार बार देखते रहे, जो मूर्ति बार बार देखते रहे, मन पर उसे गहरी छाप पड़ती गई। तो जिस आकृति का मन पर गहरी छाप पड़ गई हो, ध्यान करते करते उसका बाह्य प्रक्षेपण होने लगता है, मन बाहर दिखने लगती है। तो नासमझ साधक हो तो बड़ा खुश होता है, मुझे दर्शन हो गए। अरे क्या दर्शन हो गए? तूने एक काल्पनिक चित्र, एक काल्पनिक आकृति अपने मन में स्थापित की और बार बार दोहराते दोहराते इतने गहराई से उसे देखे कि वो बाहर उसका प्रकटीकरण होने लगा। इसका सम्यक दर्शन से दूर परे कभी संबंध नहीं, कोई लेन देन नहीं। जो सच्चाई अपने अनुभूति पर, अपने भीतर इस 3.5 हाथ की काया के भीतर अनुभूति पर उतर रही है, वो सम्यक दर्शन शुरू हुआ। किस तरह से हमको अपने बारे में सच्चाइयां प्रकट हो रही है उसको हम जान रहे हैं, और जान करके उसके स्वभाव को समझ रहे हैं, और स्वभाव को समझ करके हम अपने विकारों से मुक्त हो रहे हैं। तो सम्यक दर्शन फलदायी हुआ, कल्याणकारी हुआ।
शुक्रिया गुरुजी, आपने जो अनुभूति की बात की उससे कैसा ज्ञान जगता है?
अनुभूति से जो ज्ञान जागता है वो सही ज्ञान है बेटे। अनुभूति को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। तो सम्यक दर्शन से जो ज्ञान जागा वो सम्यक ज्ञान होगा। ये जो प्रज्ञा है उसका अर्थ ये है कि ज्ञान प्रत्यक्ष हो। किसी अन्य को ज्ञान जागा, उसकी बात सुनी और हमने स्वीकार कर ली, तो हमारा ज्ञान नहीं है, पराज्ञान है। तो अपना ज्ञान जगाता है, अपनी अनुभूति अपना ज्ञान जगाएगी तो समझो कि सम्यक ज्ञान की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके भी 3 सोपान हैं, 3 चरण हैं, श्रुत ज्ञान या श्रुत प्रज्ञा, चिंतन ज्ञान, चिंतन प्रज्ञा और भावित प्रज्ञा। तो एक एक कदम आगे बढ़ते हुए हमें भावित प्रज्ञा की ओर जाना है। ये 3 सोपान हमारे लिए अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने वाले हैं।
जी गुरु जी, ये 3 प्रज्ञाएं क्या होती है ये समझाएंगे?
श्रुत प्रज्ञा, सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात हमने स्वीकार कर ली, श्रद्धा से स्वीकार कर ली, अपनी परंपरा से मानते हैं इसलिए हम भी मानते हैं, ऐसे स्वीकार कर लिया, वो अपना ज्ञान नहीं है, पराया ज्ञान है। हमने केवल पढ़ा है, हमने सुना है और स्वीकार किया। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है, मनन करना, चिंतन करना उसका सही स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है, इसीलिए उसे मनुपुत्र कहा गया। अपने मानस का पुत्र है, चिंतन मनन करना उसका सहज स्वभाव है। तो जो बात सुने, जो बात पढ़े, उस शुद्ध प्रज्ञा पर वो चिंतन करता है, मनन करता है कि जो कुछ मैंने पढ़ा, जो कुछ मैंने सुना, क्या ये मान लेने लायक है, युक्ति संगत है। ऐसे अपना चिंतन मनन करके जब समझता है कि ठीक है, मानने लायक है, उसे स्वीकार करता है, तो ये चिंतन प्रज्ञा हुई। लेकिन इसमें एक कठिनाई है कि अधिकतर चिंतन मनन करते हुए अपनी परंपरा की जो मान्यता है और उसके साथ जब गहरा चिपकाव है तो उसी को ये सही है सिद्ध करने में अपनी सारी बुद्धि लगाता है, उसका वकील बन जाता है। तो ठीक से उसका चिंतन मनन नहीं हुआ, चिपकाव के साथ हुआ। चिंतन मनन आवश्यक है, लेकिन चिंतन मनन करके भी स्वीकार कर ले तो ठीक से चिंतन मनन करेगा तो अगला कदम उठाएगा। अधिकतर यह होता है बेटी, जिस परंपरा में कोई आदमी जन्मा है उसकी जो मान्यता है, अगर उसमें जरा वो तर्क वितर्क करता है तो उस परंपरा के, उस संप्रदाय के जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो कहेंगे तो कुतर्क करता है, हमारे शास्त्रों में तुम्हें विश्वास नहीं। तो जानते हो क्या होगा, मरने के बाद घोर नरक मिलेगा और फिर उस नरक की व्याख्या करते हैं, ऐसा नरक, ऐसा नरक, बेचारे का जी कांपता है सुनकर के। अरे बाबा, ऐसा नरक मिले तो मैं क्यों नरक की ओर जाऊं, आप जो कहते हैं मैं मानता हूं, वो तर्क संगत है या नहीं है, मानता हूं, स्वीकार करता हूं। एक प्रलोभन भी देते हैं कि हमारे यहां जो मान्यता है उसको तुम मान लोगे तो क्या होगा, मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और फिर स्वर्ग की व्याख्या, ऐसा आनंद है ऐसा आनंद है। अरे बाबा, मान लेने मात्र से स्वर्ग मिलता है तो हम क्यों नहीं माने, हम तो अभी मान लेते हैं। तो भयभीत होकर के माना कि लोभ लुब्ध होकर के माना कि अंधविश्वास से माना, माना ही माना, जाना नहीं। मानने और जानने में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये दोनों की दोनों, श्रुत प्रज्ञा और चिंतन प्रज्ञा, अधिकतर पराई प्रज्ञा है, हमारी नहीं है। तो तीसरी भावित प्रज्ञा, कोई सच्चाई भावित हुई हमारे भीतर, भावित हुई माने घटना घटी हमारे भीतर और वो हमारे द्वारा अनुभवित हुई, हमने उसका अनुभव किया और वो बार 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 घटना घट रही है, हम उसका अनुभव कर रहे हैं, तो भावितो बहुली कतो, बार 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 होते होते सच्चाई को अनुभूति के स्तर पर जान रहा है। अब पढ़ी पढ़ाई बात, सुनी सुनाई बात, चिंतन मनन की बात, सही है गलत है उसको एक और, हमारा अनुभव क्या कह रहा है। तो उस अनुभव को जब मानने लगा तो सच्चाई के रास्ते चल पड़ा। अब वो सच्चाई को ही स्वीकार करेगा, वो भावित प्रज्ञा सही माने में वो प्रज्ञा है जो हमें कल्याण तक पहुंचाती है, हमारे मुक्ति तक पहुंचाती है। क्योंकि उस प्रज्ञा से हम सच्चाई को देखना शुरू कर देंगे तो उसका परिणाम मुक्तिदायक होंगे, सारे विकारों से छुटकारा मिलने लगे।
जी गुरु जी, आपने प्रज्ञा के विषय में बताया तो हम और आसानी से जान सके, इसलिए एक उदाहरण देंगे।
अवश्य बेटी, कभी कभी धर्म की कोई बात उदाहरणों द्वारा और स्पष्ट होती है। तो एक उदाहरण, उदाहरण है केवल, एक बहुत भूखा व्यक्ति और धनी व्यक्ति किसी रेस्टोरेंट में गया, उसे जो स्थान में जा कुर्सी मिली बैठ गया। बैरे ने आकर के मेनू का कार्ड रखा सामने, वो उसे पढ़ता है, अरे आज तो यहाँ बड़े स्वादिष्ट भोजन बना है, ये आइटम है, ये आइटम है, ये आइटम है, मुंह में पानी आता है, एक घटना घटी। फिर बैरे से कहता है कि अमुक अमुक व्यंजन, अमुक अमुक भोजन मेरे लिए ले आओ। तो उसको समय लगेगा लाने में, इतने वो चारों ओर नजर पसार के देखता है, और लोग जो बैठे हैं उनको तो भोजन परोस दिया गया, वो भोजन खा रहे हैं। तो उनके चेहरे के हाव भाव देख करके वो समझता है कि इनको भोजन बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, सचमुच भोजन स्वादिष्ट है। तो फिर मुंह में पानी आता है। इसके बाद बैरा भोजन लाके रखता है और वो स्वयं खाना शुरू करता है। तो पहला तो श्रुत ज्ञान था, मेनू पढ़ा उसने, उससे उसकी भूख नहीं मिटी। और दूसरा चिंतन ज्ञान, चिंतन प्रज्ञा, दूसरे के चेहरों को देख करके, ऐसे चेहरे मैंने पहले भी देखे हैं जो लोगों को स्वाद लगता है भोजन, उनके ऐसे भाव होते हैं तो जरूर भोजन अच्छा है, चिंतन करके उसने स्वीकार किया, उसका पेट नहीं भरा उससे। तीसरा भावनामय प्रज्ञा वाला भोजन आया है और हमने चख के देखा है, सचमुच स्वादिष्ट है, पेट भी भरा है। तो ये भावनामय प्रज्ञा ये प्रमुख है। श्रुत प्रज्ञा की निंदा नहीं करते, चिंतन प्रज्ञा की निंदा नहीं करते, इन दोनों से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें मार्गदर्शन मिलता है। समझदारी के साथ उससे प्रेरणा लें, मार्गदर्शन लें, पर ये समझते रहें कि जब तक भावनामय प्रज्ञा का अनुभव नहीं हुआ मुझे, तब तक मुक्ति मुझसे बहुत दूर है। ये समझ करके उन दोनों का लाभ लेवे, उनसे प्रेरणा ले, उनसे मार्गदर्शन ले और भावनामय प्रज्ञा को पुष्ट करता हुआ मुक्त अवस्था तक पहुंच जाए।
शुक्रिया गुरु जी। प्रज्ञा के अभ्यास से हमारा मन निर्मल कैसे बनेगा, हमारा स्वभाव कैसे बदलेगा?
भोक्ता भाव का स्वभाव है, सुखद अनुभूति हुई तो सुख भोगने लगे, दुखद अनुभूति हुई दुख भोगने लगे, सुख भोगने लगे तो राग जगाए जा रहे हैं, राग जगाए जा रहे हैं। प्रज्ञा इस स्वभाव को पलटती है, हमें भोक्ता भाव से दृष्टा भाव में स्थापित करती है। हम दोनों ही अवस्थाओं को समता के साथ देखते हैं तो गांठें बंधनी तो दूर, जो गांठें बंधी हैं वो खुलनी शुरू हो जाती है। भोक्ता बनकर भोगते बंधन बंधते जाए, और दृष्टा बनकर देखते बंधन खुलते जाए। ये नियम प्रकृति का, और यही काम प्रज्ञा कराती है कि हम कैसे भोक्तापन से छुटकारा पाएं और दृष्टापन में स्थापित हो। ये काम केवल बुद्धि विलास से होता नहीं, केवल बुद्धि विलास से मुक्त हुआ ना कोई। जब अपनी प्रज्ञा जगे तो सहज मुक्त है सोई। अपनी प्रज्ञा जागे तो सच्चाई देखने लगा कि जैसे ही मैं प्रतिक्रिया करता हूं राग की या व्याकुल हो जाता हूं, और व्याकुल होना कोई चाहता नहीं, तो अपने आप स्वभाव बदलना शुरू होता है।
शुक्रिया गुरुजी। अब समय है श्रोतागण के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि परिवार में सदस्यों के बीच बहुत तनाव बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए?
विपश्यना करें, सारे तनाव दूर हो जाएंगे। लेकिन वैसे एक सामान्य तरीका भी है। एक बात ये ख्याल रखें, जीवन का बहुत सा समय ऐसा बीता होगा जब उस व्यक्ति के साथ हमारे स्नेह संबंध थे, अच्छे संबंध थे। आप किसी कारण से कोई घटना घट गई या कुछ हो गया, आपसे तनाव आ गया तो परस्पर द्वेष होने लगा, दुर्भावना जागने लगी। तो एक तरीका ये कि उन दिनों को याद करें जिस समय की आपस में प्यार था, स्नेह था, उसको याद करने से मन में मोह जागेगा। अरे देखो, इसका हमारे साथ ऐसा व्यवहार था, ऐसा व्यवहार था। आज जो व्यवहार में खराबी आई उसको याद करोगे तो द्वेष जागेगा। याद करे तो याद कर, बे दिन जत्थो प्यार, प्यार जगावे स्वर्ग सुख और द्वेष नरक को द्वार। तो क्या करोगे बार बार द्वेष करके? प्यार जागेगा, पुरानी बातें, जो अच्छी बातें हैं, प्रिय बातें हैं, उनको याद करो। और फिर जड़ों से द्वेष निकालने के लिए, जड़ों से दुश्मनी निकालने के लिए, जड़ों से दुर्भावना निकालने के लिए विपश्यना करोगे तो देखते 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 अभ्यास करते करते भावित प्रज्ञा द्वारा अभ्यास करते करते जड़ों से निकल जाएगा। फिर वही व्यक्ति जिसके साथ संबंध खराब थे, अपने आप संबंध अच्छे होने लगेगी।
गुरुजी, अगला प्रश्न है कि मृत्यु हो जाने पर शरीर तो नष्ट हो जाता है, तो फिर हमारे कर्मों के अनुसार जो संस्कार बनते हैं वो हमारे अगले जन्म में कैसे साथ चलते हैं?
हमने पहले जितने संस्कार बनाए वो सारे संग्रहित हैं। इस क्षण हम पुराने संस्कारों का संग्रह लिए चल रहे हैं। इस क्षण ये भी हो सकता है कि हमने कोई नया बुरा संस्कार उसमें जोड़ दिया। ये भी हो सकता है कोई बुरा संस्कार हमने छोड़ दिया, हमने अच्छा संस्कार जोड़ दिया। इस क्षण हमने क्या किया? जो छोड़ा, जो जोड़ा, अगला क्षण वैसा ही बनेगा। हर क्षण पिछले क्षण की संतान है। तो जो पिछले क्षण अपने साथ लिए चल रहा है चित्त, वो साथ है, उसमें इस क्षण में हमने छोड़ा या जोड़ा उसके अनुसार फिर आगे का क्षण। यूं क्षण प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण। मृत्यु के समय क्या होता है? कोई पत्थर के लकीर वाला हमारा संस्कार, मृत्यु के समय उनमें से कोई ना कोई अपना सिर उठाएगा और उसी के अनुसार अगला क्षण। मृत्यु के समय इस जीवन का अंतिम क्षण अगले जीवन के प्रथम क्षण का जनक है। अगले जीवन का प्रथम क्षण इस जीवन के अंतिम क्षण की संतान है। तो जैसा ये क्षण चित्त की ये अवस्था इस समय, बिल्कुल वैसे ही अगले क्षण की अवस्था होगी। अब उसमें फिर हम यही जोड़ तोड़ करते चले जाएंगे और मृत्यु के समय फिर कोई गहरा संस्कार जागेगा, वो धक्का देगा, एक नया जन्म आएगा। फिर वो जो कुछ साथ लिए चल रहा है उसको कम करेगा, बढ़ाएगा। ये उसकी समझदारी पर है। समझदारी होगी तो बुरे कर्मों को दूर करेगा, अच्छों को बढ़ाएगा। ये प्रज्ञा से इस प्रकार करेगा। अन्यथा ना समझी होगी तो बुराई बढ़ाता चला जाएगा, दुख पर दुख बढ़ाता चला जाएगा, और ऐसे ही जन्म मरण का चक्कर चलता चला जाएगा। नहीं तो जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल जाए, सारे संस्कारों को धो के साफ कर दे।
शुक्रिया गुरुजी। इसी के साथ आज का ये वार्तालाप अब यहीं पे समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम माताजी।
विपश्यना 10 दिवसीय आवासीय शिविरों में सिखाई जाती है। शिविरार्थी 10 दिनों में साधना की रूपरेखा समझते हैं और इस हद तक अभ्यास करते हैं कि साधना के अच्छे परिणामों का अनुभव कर सके। शिविर का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, रहने तथा खाने का भी नहीं। शिविरों का पूरा खर्च उन साधकों के द्वारा दान में से चलता है जो शिविर में लाभान्वित होकर दान देकर आने वाले साधकों को लाभ देना चाहते हैं। विपश्यना ध्यान केंद्र न्यूजीलैंड में भी उपलब्ध है। यहाँ का एड्रेस है 153 बर्न साइड रोड मकाराउ कौ कपाकापा। अप्रोक्सीमेटली एक घंटे का ड्राइव है नॉर्थ ऑकलैंड से। यहाँ की वेबसाइट का एड्रेस है www.medini.dhamma.org यानी के www.medini.dhamma.org। यहाँ का फोन नंबर है 09420-5319। आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप जरूर से फोन कर सकते हैं। और आप जब भी हमारे सेंटर में विजिट करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके सेंटर की विजिट भी कर सकते हैं। ये प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रोग्राम एक हफ्ता हिंदी में तथा दूसरे हफ्ते इंग्लिश में बारी बारी से प्रसारित किया जाता है। अगले हफ्ते आप ये प्रोग्राम इंग्लिश में सुन सकेंगे।